नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत आज पश्चिम एशिया में तेल राजनीति नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। ऑयल पॉलिटिक्स इन वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया में तेल का उत्पादन। आधुनिक जीवन में ऊर्जा के स्रोतों में पेट्रोल का काफ़ी महत्व है तथा युद्ध एवं शांति में यह जीवन का आवश्यक अंग है। 20वीं सदी के आरंभ में खनिज तेल का विकास हुआ और इसी के साथ पश्चिमी एशिया के उत्तर क्षेत्र को अरब काल्पनिक कथाओं में वर्णित अलादीन का चिराग की भांति पेट्रोल के अकूत भंडार के रूप में एक शक्तिशाली धन स्रोत प्राप्त हुआ, जिसने इस क्षेत्र को आर्थिक, कूटनीतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बना दिया। सर्वप्रथम इस क्षेत्र में 1891 ईस्वी में एक ऑस्ट्रेलियन उद्योगपति जॉन नॉक्स डी आरसी ने रुचि ली तथा ईरान में उत्तरी भाग के को छोड़कर अन्य हिस्सों में तेल उत्पादन का अधिकार प्राप्त किया। इस समय ईरान का नाम पर्शिया था तथा यहाँ का शाह मुजफ्फरुद्दीन था। इसे 20,000 पाउंड प्राप्त हुआ और 20,000 के शेयर दिए गए। 1908 ईस्वी में तेल का उत्पादन सर्वप्रथम मस्जिद सुलेमान नामक स्थान पर आरंभ हुआ। इस उद्योग के विकास के लिए 1909 ईस्वी में एंग्लो पर्शियन तेल कंपनी की स्थापना की गई और इसे 60 साल के लिए ईरान के दक्षिणी भाग में तेल खनन एवं उत्पादन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। शाह को वार्षिक लाभ में 16% मिलना तय हुआ। एंग्लो पर्शियन कंपनी का ही नाम बाद में देश का नाम ईरान पड़ने के बाद एंग्लो ईरानी तेल कंपनी हो गई। इसी कंपनी ने सत अल अरब नदी के मुहाने पर अबादान के द्वीप में 1912 ईस्वी में प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया, जहां प्रतिदिन 2500 बैरल तेल साफ किया जा सकता था। प्रथम महायुद्ध के पहले हवाई जहाज, कार आदि में तेल का उपयोग आरंभ हो गया था तथा 1914 ईस्वी में ही ब्रिटिश सरकार ने इस तेल कंपनी के अधिकांश हिस्से खरीद लिए। वैसे भी इस कंपनी में अधिकांश पूंजी ब्रिटिश पूंजीपतियों की ही लगी हुई थी। प्रथम महायुद्ध में हवाई जहाज और टैंकों में इसका उपयोग किया गया, जिससे तेल का महत्व निरंतर बढ़ने लगा। धीरे धीरे वाहनों एवं कारखानों में भी इसका उपयोग होने लगा और इस कंपनी को काफ़ी आमदनी होने लगी। अतः युद्धोपरांत ईरान में रजा शाह ने तेल कंपनी से लाभांश के हिस्से की मांग की तथा कंपनी के सारे अधिकार समाप्त कर दिए। इससे ब्रिटेन के साथ तनाव हुआ तथा समस्या राष्ट्रसंघ के समक्ष लाई गई। अंत में राष्ट्रसंघ ने अगले 60 साल के लिए लाभांश की रकम बढ़ाकर 20% कर दिया। इस तरह तेल को लेकर पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाद 1932 में ही हुआ, परंतु तेल का उत्पादन बढ़ता ही गया एवं द्वितीय महायुद्ध तक ईरान में 1 करोड़ टन से भी अधिक तेल पैदा होने लगा और ईरान का आर्थिक एवं सामरिक महत्व काफ़ी बढ़ गया। इराक, प्रथम महायुद्ध के पहले ही इराक में भी तेल के होने का अनुमान लगा था, परंतु युद्ध के पश्चात ब्रिटिश पूंजीपतियों ने इस दिशा में पहल की तथा 1930 ईस्वी में इराक पेट्रोलियम कंपनी की स्थापना की गई। इसके बाद 1932 ईस्वी में मोसल पेट्रोलियम कंपनी और 1938 ईस्वी में बसरा पेट्रोलियम कंपनी की नींव पड़ी। इन कंपनियों में फ्रेंच, डच तथा अमेरिकन पूंजीपतियों ने भी सहयोग किया। इसके बदले में इराक को प्रति टन कच्चे तेल के लिए 4 शिलिंग मिलना तय हुआ। भिन्न भिन्न कंपनियों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग रहे। खाड़ी के क्षेत्र, धीरे धीरे ऐसा विश्वास होने लगा कि ईरान और इराक के पड़ोस के अन्य क्षेत्रों में भी खनिज तेल के स्रोत हैं। अतः ईरान की खाड़ी में स्थित शेखों की रियासतों पर भी ब्रिटिश पूंजीपतियों की नजर गई। प्रथमतः एक ब्रिटिश कंपनी ने 1925 ईस्वी में बहराइन में तेल की तलाश आरंभ की, परंतु बाद में बहराइन के शेख से यह अधिकार एक अमेरिकी कंपनी ने प्राप्त कर लिया तथा 1944 ईस्वी में बहराइन में भी तेल का उत्पादन आरंभ हो गया। इसमें शेख को प्रति टन कच्चे तेल के लिए 3.25 रुपये लाभांश मिलना तय हुआ। इसी के साथ कुवैत में भी 1934 ईस्वी में कुवैत तेल कंपनी का संगठन किया गया तथा इसमें ब्रिटिश एवं अमेरिकी पूंजीपतियों ने आधी आधी पूंजी लगाई। कुवैत का क्षेत्रफल मात्र 9,375 वर्ग मील है, जो कि एक मरुभूमि है। तेल कंपनी ने 74 साल के लिए तेल उत्पादन का अधिकार वहां से प्राप्त किया। शीघ्र ही वहां भी तेल का उत्पादन आरंभ हुआ और वर्गन की तेलकूप विश्व का विशालतम तेलकूप बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुवैत में तेल का वार्षिक पैदावार 5 करोड़ टन से भी ऊपर पहुंच गया। कुवैत पेट्रोलियम कंपनी ने ही 1938 ईस्वी में कतार के शेख से भी तेल उत्पादन का अधिकार प्राप्त कर लिया और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात वहां भी 1 करोड़ टन सालाना उत्पादन होने लगा। सऊदी अरब। इस क्षेत्र में सऊदी अरब में तेल का उत्पादन करने के लिए अमेरिकी पूंजीपतियों ने 1933 ईस्वी में इब्न सऊद से अधिकार प्राप्त किए तथा कैलिफोर्नियन तेल कंपनी ने इसके लिए 2,50,000 डॉलर दिए। 1938 ईस्वी में अल हासा क्षेत्र में दम्माम नामक स्थान पर पहले तेलकूप से उत्पादन आरंभ हो गया। युद्धकाल में ही कतिपय अन्य कंपनियों की साझेदारी से अरबियन अमेरिकन तेल कंपनी की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई तथा युद्ध के पश्चात यह कंपनी करीब 5 लाख बैरल तेल पैदा करने लगी, जो कि 1955 ईस्वी तक 10 लाख बैरल तथा 1960 ईस्वी तक 35 बैरल प्रतिदिन हो गई। शीघ्र ही यह पता चला कि विश्व भर में खनिज तेल के अनुमानित भंडारों में 1/4 सिर्फ सऊदी अरब में है। इसके कारण सऊदी अरब का आर्थिक एवं राजनीतिक महत्व काफी बढ़ गया। तेल की राजनीति। पश्चिमी एशिया के बंजर एवं निर्धन क्षेत्रों में तेल के आविष्कार ने एक नई समृद्धि का विकास किया। एक तरफ इसने विश्व राजनीति को प्रभावित किया तथा महाशक्तियों में इस क्षेत्र में प्रभाव हासिल करने के लिए प्रतिद्वंद्वता का श्री गणेश किया, तो दूसरी ओर इन देशों में भी एक नई शक्ति की भावना आई। ये विश्व राजनीति से प्रभावित हुए तथा विश्व राजनीति को प्रभावित भी करने लगे। इस क्षेत्रों से उत्पादित तेल की खपत पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा जापान आदि देशों में मुख्यतः होने लगी और तेल को भूमध्य सागर के तट तक लंबी पाइपों के द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था की गई। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व उत्तरी इराक से ट्रिपोली एवं दूसरी हैफा से तक निर्मित की गई और इनकी लंबाई 55 मील से अधिक थी। महायुद्ध के पश्चात एक पाइप इराक में किरकुक से ट्रिपोली तक बिछाई गई और दूसरी जॉर्डन से इसराइल की सीमा तक। इसी के साथ सऊदी अरब से लेबनान में सिडोन के बंदरगाह तक भी एक 1,000 मील लंबी पाइप का निर्माण किया गया। ये पाइप अरब क्षेत्र से होकर गुजरते हैं एवं इनकी सुरक्षा के प्रश्न को लेकर अरब राज्यों का राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया। इसका पहला परिणाम 1948 ईस्वी के अरब इसराइल युद्ध में दृष्टिगोचर हुआ, जबकि कुछ दिनों के लिए इन पाइपों को बंद कर देना पड़ा। इसके अतिरिक्त द्वितीय महायुद्ध के पश्चात शीत युद्ध के विकास एवं महाशक्तियों की होड़ में इस क्षेत्र का प्रधानतः लक्ष्य बनाया गया। इस क्षेत्र में मुख्यतः पाश्चात्य गुट का प्राधान्य था, अतः रूसी गुट का हित इस क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभाव खत्म करने में था। इसके विपरीत पाश्चात्य गुट किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र को अपने शिकंजे में रखना चाहता था। इसके विपरीत इस क्षेत्र के निवासियों को शनै शनै पाश्चात्य देशों के शोषण का गुमान भी होने लगा और राष्ट्रवादी तत्वों ने अधिक लाभांश, राष्ट्रीयकरण आदि पर जोर देना आरंभ किया। इसी के साथ अरब राज्यों के इजराइल विरोधी संघर्ष एवं इजराइल को पाश्चात्य समर्थन मिलने से भी इस क्षेत्र की राजनीति में निरंतर परिवर्तन आने लगा। अतः तेल के उत्पादन से सारे पश्चिमी एशिया में आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की नई भूमिका तैयार हो गई और यह क्षेत्र राजनीतिक दांवपेच का अखाड़ा बन गया। पश्चिमी एशिया में पाश्चात्य साम्राज्यवाद का प्रमुख सूत्रधार ब्रिटेन था, परंतु अमेरिका तथा रूस जैसी महाशक्तियों के उदय ने शनै शनै ब्रिटेन का प्रभाव इस क्षेत्र में गौण कर दिया। 1951 ईस्वी में ईरान में तेल कंपनी के राष्ट्रीयकरण के बाद वहां एक बवंडर पैदा हुआ और ब्रिटिश प्रभाव को काफी क्षति पहुंची। तत्पश्चात 1956 ईस्वी में स्वेज राष्ट्रीयकरण ने भी ब्रिटिश प्रभाव को चोट पहुंचाई और इस काल में अरब राज्यों ने तेल की आपूर्ति रोककर पाश्चात्य देशों को अपनी नई शक्ति का परिचय दिया। वास्तव में अरब इसराइल के युद्धों में तेल की शक्ति का उपयोग इन राज्यों ने निरंतर किया तथा अमेरिका ने बगदाद संधि, मध्य पूर्व रिक्तता सिद्धांत आदि द्वारा इस क्षेत्र में अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया। दूसरी ओर रूस ने अरब राष्ट्रीयता पर बल देकर सीरिया, इराक, मिस्र आदि देशों को अपने प्रभाव में लाकर इस क्षेत्र में राजनीतिक दांवपेच को नया आयाम दिया। तेल उत्पादन कतिपय राज्यों ने अपना अलग संगठन ओपेक बनाकर तेल के मूल्यों में असाधारण वृद्धि कर ली है और विश्व राजनीति पर इसका निरंतर प्रभाव बढ़ रहा है। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।